अर्पिता की जिद सुनकर अभिमन्यु ने कहा, अर्पिता अभी जिद मत करिए, हम अपना काम कंप्लीट किए बिना नहीं आएंगे। आप जानती हैं इस प्रोजेक्ट की हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। अब हम अपने मकसद में कामयाब होकर ही वापस लौटेंगे। और आप मासा की बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम उदयपुर के बेस्ट डॉक्टर को मासा के ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। हम सब कुछ अरेंज कर देंगे और समर्थ को सब कुछ बता देंगे। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जब तक हम वहाँ नहीं आते, आप मासा के साथ ही रहिए, उनका पूरा ख्याल रखिए और अपना भी। अर्पिता उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाई। उसने धीमी आवाज़ में हामी भरी और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अभिमन्यु ने फ़ोन साइड में रखा और अपने आप से बात करते हुए बोला, जिस तरह अर्पिता और समर्थ ने हमें सारी बातें बताई हैं, उससे हमें इतना तो समझ आ गया है कि वहाँ मामला बिगड़ता जा रहा है। लेकिन अगर सच में हमारे बड़े भाई वापस आ चुके हैं, तो फिर उनका पूरी तरह हक बनता है और हम किसी से उसका हक छीनने में विश्वास नहीं रखते। वैसे भी हमें राजगद्दी का कोई लालच नहीं है, लेकिन चाचा जी ने जो किया और जो अभी कर रहे हैं, उसकी सज़ा तो उन्हें मिलेगी ही। अपने आप से ये सारी बातें करने के बाद अभिमन्यु शीशे के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने अपनी कोट का बटन लगाया और शीशे में देखते हुए कहा, वो सब हम वहाँ जाकर देख लेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इप्सिता से बात करना है और हम आज उनसे बात करके उन्हें पूरी सच्चाई बता देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने घड़ी देखी, अभी 3:30 बज रहे थे और वो तुरंत उस रेस्टोरेंट की तरफ निकला जिसकी लोकेशन इप्सिता ने सेंड की थी। वहीं दूसरी तरफ इप्सिता अपने रूम में लेटी हुई थी। उसने अपनी आँखें बंद की थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद इप्सिता की आँख खुली और उसने देखा कि 4:30 बज रहे थे। इप्सिता उठी और वॉशरूम गई। उसने अपना चेहरा धोया और फ्रेश होने के बाद मुंह पोंछते हुए शीशे के सामने आकर खड़ी हुई। इप्सिता के चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था। उसने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही इप्सिता रूम से बाहर आई, उसने देखा कि नंदिनी की मॉम लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। वो अपने लैपटॉप पर शायद अपने वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। जैसे ही उन्होंने इप्सिता को बाहर निकलते देखा, वो अपनी जगह से उठकर खड़ी होती हुई बोली, इप्सिता बेटा क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? इप्सिता ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम काफ़ी देर से रूम में थे तो हमें सफोकेशन होने लगा, इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हैं। 1 घंटे में वापस आ जाएंगी, आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा। नंदिनी की मॉम ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वो सीधे इप्सिता के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, इप्सिता बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इप्सिता ने नामे अपना सर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आंटी आपको इतना परेशान होने की, और वैसे भी हम कोई छोटी बच्ची नहीं है, आप सब हमें इस तरह ट्रीट करते हैं, भाई नंदिनी और आप भी, लेकिन हम अपना ख्याल रख सकती हैं, आप प्लीज़ परेशान मत होइए, और आप वैसे भी अपना काम कर रही थी ना। नंदिनी की मॉम ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो बस थोड़ी सी एडिटिंग थी, वही कर रही थी। इप्सिता ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हाँ तो ठीक है, आप अपनी एडिटिंग कंप्लीट करिए, और वैसे भी हम बस यहीं पार्क तक जाएंगे और कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। वैसे भी काफ़ी देर से हमारा सिर दर्द हो रहा था, पर अब काफ़ी आराम मिल गया है, तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर टहलना चाहती हैं। अगर बाहर जाकर थोड़ी ताज़ी हवा में रह लेंगे तो काफ़ी बेटर फील करेंगे। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना मोबाइल फ़ोन अपने पर्स में डाला और वो चुपचाप अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। इप्सिता रास्ते में थी और उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। वो अपने आप से बोली, आखिर ऐसी क्या बात है जो अभिमन्यु हमसे बात करने के लिए इतना डेस्परेट हो रहा है? क्या हम उनसे मिलकर सही कर रहे हैं? हमने ना ही उदय भाई को बताया और ना ही नंदिनी को। क्या हमें उन दोनों में से किसी को बताकर अभिमन्यु से मिलना चाहिए था? क्या हम नंदिनी को ये बात बताएं? क्योंकि भाई को ये बात बताना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि भाई जिस तरह से अभिमन्यु से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, उससे तो इतना ही समझ में आया है मुझे कि अब भाई बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा अभिमन्यु के साथ कोई रिलेशन हो। क्या करें, नंदिनी को इस बारे में बताएं क्या? इप्सिता के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, वो अपना फ़ोन निकालकर नंदिनी के नंबर की तरफ देखने लगी, और तभी उसने अपना फ़ोन वापस पर्स में रखते हुए कहा, हम भी कहा नंदिनी के बारे में सोच रहे हैं, और वैसे भी नंदिनी अब हमारी बेस्ट फ्रेंड होने से पहले हमारी भाभी है, और अगर हमने नंदिनी को ये बात बताई तो वो भाई को ये बात ज़रूर बता देगी, और फिर पता नहीं भाई किस तरह से रिएक्ट करेंगे। आई थिंक मुझे अभी इस बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी अभिमन्यु ने कॉल पर स्पेशली ये बात कही थी कि हम किसी को भी अपने साथ लेकर ना आएँ, इसीलिए हम अकेले ही जा रही हूँ। एक बार हम अभिमन्यु से मिल लेते हैं, आखिर हमें भी तो पता चले कि वो ऐसी कौन सी बात है जो हमें बताना चाहते हैं। इप्सिता ये सारी बातें सोचते हुए सीधे उसी रेस्टोरेंट में पहुंची, और जैसे ही इप्सिता रेस्टोरेंट के अंदर आई, उसने देखा कि अभिमन्यु पहले से ही वहां बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था। उसने घड़ी देखी, 4:30 बज रहे थे। इप्सिता ने घड़ी देखकर खुद से कहा, हमने अभिमन्यु से कहा था कि हम उनका वेट नहीं करेंगे और हमें ही इतनी देर हो गई। आई थिंक शायद अभिमन्यु काफ़ी देर से यहाँ बैठकर हमारा वेट कर रहे हैं। इससे ये बात तो समझ में आ गई है कि अभिमन्यु के लिए हम आज भी इम्पॉर्टेंट हैं और वो हमसे बात करने के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड है, इसीलिए तो वो यहाँ पर इतनी देर से बैठकर हमारा वेट कर रहे हैं। इतना बोलकर वो आगे बढ़ी और उसने कहा, ठीक है, अगर अभिमन्यु चाहते हैं कि हम उनसे बात करें तो यही सही है। एक बार हम उनसे बात करके देखते हैं कि आखिर वो क्या सफाई पेश करने वाले हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अपने मन में ये सब सोचते हुए इप्सिता आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसने अपने मन में कहा, वजह क्या हो सकती है उनकी शादी के मंडप में ना आने की? हम इतना तो जानते हैं, वो शादी करने के लिए सिर्फ इसीलिए राजी हुए थे क्योंकि उनकी मासा ने उन्हें कहा था, और अगर वो शादी के दिन मंडप में नहीं आए तो होना हो उसका रीजन तो बस एक ही हो सकता है। इतना बोलकर इप्सिता अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता को देखा, वो जल्दी से अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और उसने इप्सिता की तरफ देखा। इप्सिता के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और फिर भी वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। इप्सिता का ड्रेसिंग सेंस पहले से बिल्कुल बदल गया था। इप्सिता ने छोटा क्रॉप टॉप और जीन्स पहनी हुई थी और उसके एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट था। इप्सिता ने गुची का एक छोटा सा ब्लैक कलर का पर्स लिया हुआ था और दूसरे हाथ में उसका आईफोन था। अभिमन्यु ने इप्सिता को सिर से लेकर पाँव तक देखा और अपने मन में कहा, इप्सिता तो बहुत ही हॉट लग रही है। वैसे पहले मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसे कपड़े भी पहनती होगी, लेकिन ये तो उन पर बहुत सूट कर रहा है। वैसे वो मुझे हर कपड़ों में ही अच्छी लगती हैं और आज तो कुछ ज़्यादा ही, इतने दिनों बाद मेरे सामने इतने नज़दीक। वो ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था और इप्सिता हाथ बांध कर उसके सामने खड़ी हुई थी और उसके कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात नोटिस की, तुरंत ही वो इप्सिता की प्रभाव देखकर बोला, इप्सिता थैंक यू यहाँ आने के लिए, आइए बैठिए।
इप्सिता ने अभिमन्यु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप अभिमन्यु के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठ गई। अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि बस अब इप्सिता फाइनली उससे मिलने आ गई है और अब वो उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर लेगा। अभिमन्यु ने उसे देखकर अपने मन में कहा, हम इप्सिता के मन से आज अपने लिए जितनी भी गलतफहमियां हैं उसे क्लियर कर देंगे। अभिमन्यु ने मेन्यू कार्ड उठाते हुए कहा, क्या लेंगी आप इप्सिता, हॉट कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी? क्योंकि हमें पता है आपको सॉफ्ट ड्रिंक या जूस इतना पसंद नहीं है। इप्सिता ने ये सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और अपने मन में सोचा, इतने दिनों के बाद अभिमन्यु को आज भी हमारी पसंद और नापसंद याद है। इप्सिता को काफ़ी अच्छा फील हुआ, लेकिन फिर भी एकदम सीरियस लुक के साथ उसने सीधे ही कहा, हम यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आए हैं, हम कुछ भी नहीं लेंगी, इसीलिए आप जो भी बात करनी है जल्दी वो बात करिए, हमें जल्दी वापस घर भी जाना है। इप्सिता अभिमन्यु से इतना बोलकर चुप हुई और तभी अभिमन्यु ने कहा, हम जानते हैं आप हमसे नाराज़ हैं, इसीलिए आप इस तरह हमसे इतना रूड बिहेव कर रही हैं, लेकिन एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए तो उसके बाद आप समझ जाएंगी कि उस दिन हमने ऐसा क्यों किया। आप बस एक बार हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ये बहुत बड़ा कदम था, हमने भी ऐसा करने से पहले हज़ार बार सोचा, लेकिन जब हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला तभी हमने इतना बड़ा कदम उठाया। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, इतनी भी बड़ी आखिर क्या बात थी जो आप हमें शादी के मंडप में अकेला छोड़कर वहां से चले गए? अगर अभिमन्यु कोई भी प्रॉब्लम थी तो आप हमें बता सकते थे, आपने एक बार भी हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा। और वैसे भी हम जानते हैं आप ये शादी कभी नहीं करना चाहते थे, आप तो सिर्फ अपनी मासा के दबाव में आकर ये शादी कर रहे थे। और इतना बोलते बोलते इप्सिता चुप हो गई और अभिमन्यु ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, कैसे बताएं हम आपको ये बात इप्सिता, क्योंकि हमें डर था अगर हमने आपको ये बात बताई तो पता नहीं उस वक्त आप हमारी बात पर यकीन करती या नहीं, और अगर हम आपको ये बात बताते तो पता नहीं आप हमारे बारे में क्या सोचती, और शायद जब तक हम आपको ये बात बताते और समझाने की कोशिश करते तब तक शायद बहुत देर हो जाती, और हम ऐसी सिचुएशन में थे कि हम एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ज़रा भी टाइम वेस्ट होता तो शायद हम आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देते, और हम ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, इप्सिता उसे घूरते हुए बोली, हम यकीन करते या नहीं वो बात तो आपको हमें बताने के बाद सोचनी चाहिए थी ना, आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे और आपने हमें वो बात बताई ही नहीं। रही बात हमें खोने की तो आप हमें पहले ही खो चुके हैं। आप ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पर आए हैं और आप अगर हमसे माफ़ी मांगेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमसे माफ़ी की उम्मीद मत करिएगा। हमने आपको प्रॉमिस किया था सिर्फ इसीलिए हम यहाँ आई हूँ, वरना हमारा यहाँ आपके पास आकर आपसे बात करने का कोई मूड नहीं था। अब बताइए आखिर बात क्या है,